آگے عقیدے کی کچھ خرابیوں کا ذکر ہے. فرمائیں ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیا چھوٹے بن کر رہے. یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائی کہتے ہیں کہ المسیح اللہ کا بیٹا ہے. یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں. ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے, اللہ کی مار ان پر, یہ کہاں سے دھوکا کھا رہے ہیں. یہ کیوں ہوا؟ دیکھیے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں, عقیدے کی وجہ سے فرق ہوا. یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بینگ اے ہیومن ہر ایک برابر ہے. وجہ کہ کس شریعت ایجاد کرنے کے لیے نہیں اللہ نے دی, اس کو مانو. اپنی مرضی سے کوئی اللہ کا بیٹا کسی کو بنا دے, کوئی کسی کو بنا دے, تو یہ تو بہت ہی زیادہ وہی بات ہوگی کہ آپ کسی ملک میں جا کر اس کے قانون کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مریم. اور ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا تھے, خدا کی مار ان پر کہاں سے یہ دھوکہ کھا رہے ہیں. انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا. اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی, حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہ دیا گیا. وہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں, پاک کے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں, یعنی ان کے باطل نظریات کی بات ہے. کسی نے عیسیٰ کے ناطے سے کی, کسی نے حضرت عزیر کے ساتھ. اور حضرت عزیر کو جیوز کا ایک فرقہ کیوں مسلمان اللہ کا بیٹا کہتا ہے؟ وہی پیچھے جو واقعہ ہو, او کلذی مر علی قریہ, تیسرے پارے کے شروع میں آپ پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر کو 100 سال تک فوت کیے رکھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا. اب دوسری بات یہاں یہ جو نا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا, اس کو بھی سمجھ لیجئے. عدی بن حاتم جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ, نصارہ تو کبھی نہیں اپنے پریسٹ کو اور اپنے علماء کو خدا کہتے, تو اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا وہ ان کے حلال کو بغیر سند کے, بغیر دلیل مانگے حلال نہیں کہہ دیتے؟ اور جس سے وہ روکتے ہیں اس کو بغیر کسی قرآن سنت کی مثال, جیسے آج سب لے لے کہ اس کے بغیر اس کو حرام نہیں کہتے؟ کہا یہ تو کرتے ہیں. کہا یہی ہوتے علماء کو خدا بنانا. یا پھر شخصیت پرستی کی بات آتی ہے. آپ دیکھیے کہ جب علماء کا فیصلہ اللہ کے فیصلے پہ غالب آ جائے, واضح حکم موجود ہو مگر میرے امام, میرے مسلک, میرے شیخ, میرے پیر فلاں کی یہ رائے ہے, اور وہ اللہ اور نبی کی بات کو چھوڑ کر اگر کسی انسان کی بات, اس کے فتوے اور اس کی بات کو لے لے گا, تو یہ اندھی تقلید کہلائے گی. آج دنیا میں ہم ایسا نہیں کرتے, عقل کے ساتھ دوا استعمال کرتے ہیں, عقل کے ساتھ دنیا میں چلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی چیزوں کو یہاں پیش کر دیا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ان کے عزائم, یریدون یطفئوا نور اللہ بافواہہم, بڑی خوبصورت آیتیں, تدبر کی آیتیں بھی اس بارے کی یہ ہو سکتی ہیں کہ کس طرح سے ان آیات کو اللہ نے آج مسلمانوں کے سامنے پیش کر کر ماضی کے آئینے میں حال اور مستقبل دکھا دیا. کیسے؟ یریدون یطفئوا نور اللہ بافواہہم. یہ لوگ چاہتے ہیں, کون؟ جن کا اوپر ذکر ہوا کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھوکوں سے بجھا دیں, مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں, خواہ وہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو. یہ کون بجھانا چاہتے ہیں اور کیسے بجھائیں گے؟ اور منہ کی پھوکے کے پروپیگنڈاز, کل بھی تھا آج بھی ہے. جب اللہ کے نبی مدینہ میں آئے تو وہاں کے جو موجود لوگ تھے, جو دین کے نام پہ خود کو بہت بڑا کہہ چکے تھے, کوئی دن شاید نہ ہو کہ جس دن وہ اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کریں. ان کے منہ تھے, آج کے منہ میڈیا ہے. آج کی پھوکے وہ پروپیگیشن ہے کہ ایک جملہ بولا جاتا ہے اور اس کے ساتھ پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں پہ ظلم و ستم شروع ہوتا ہے. لیکن میرے اور آپ کے لیے اس میں خوشی کی بات کیا ہے کہ اللہ کا ارادہ کیا ہے, وہ کبھی اس میں کوئی پورے نہیں ہوں گے. اللہ کہتے ہیں کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کے چراغ کو بجھا دیں, لیکن یہ کبھی ہوگا نہیں. اور آپ نوٹ کیجئے گا, جتنا اسلام کے خلاف باتیں ہوتی ہیں اتنا ہی اسلام زیادہ پھیلتا ہے. جیسے آپ دیکھیے کہ ہاتھ میں شمع ہو, کبھی آپ نے موم بتی چلائی ہو؟ پہلے تو لوڈ شیڈنگ میں جلاتے تھے یا بجلی کے نہ ہونے پہ, آج کل ہم ماشاءاللہ کینڈل ڈنر اور وہ جو بھی اس طرح کے موقع پہ جلا لیتے ہیں. لیکن امیجینیشن میں لائیے کینڈل کو. اب کینڈل آپ کے ہاتھ میں ہے, اب کوئی اس کو بجھانا چاہتا ہے, پھونک مارتے ہیں. آپ تیز پھونک ماریں گے نا تو بجھے گی, اور اگر آپ کی پھونک اتنی تیز نہ ہو, ذرا ہلکی ہو, تو پتہ کیا ہوتا ہے؟ اور تیز چلتی ہے. کسی کی پھونک میں اتنا اثر ہی نہیں کہ اسلام بجھے. جتنا یہ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں اتنا اسلام عام ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں نا, بدنام ہوں گے تو کیا نام تو ہوگا. جتنے یہ بڑے بڑے فتنے آج سے 11-12 سال پہلے اٹھے اور ایسی چیزیں آئیں کہ میڈیا پہ اسلام گیا, اتنا اسلام پھیلا. 9/11 کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا, کیا ہوا؟ اس کے بعد قرآن ریکارڈ کی حد پہ سیل ہوئے, पूरे मीडिया पे लोगों ने वेबसाइट्स को जाके छान मारा, हमारे बहुत अच्छे टर्म्स हैं दारुसलाम वालों के साथ जो बुक्स का काम करते हैं, तो उन्होंने तब ये हमें बताया था कि उसके बाद इतना कुरान बिका है, इतना कि जेलों में और इधर लोग कहते हैं इस्लाम है क्या, हम इसको देखें। तो मुझे फिक्र की जरूरत नहीं। याद रखिए कि बुझाने में सबसे ज्यादा कौन खतरनाक है, आप अपने हाथ में मोमबत्ती लेते हैं, दूसरे लोग दूर बैठे हैं, सबसे ज्यादा इस कैंडल को किससे खतरा, कौन इसको बुझा सकता है जिसके हाथ में मोमबत्ती है। इस्लाम को बुझाने में मुसलमान जितना खतरनाक किरदार आज अदा कर रहा है, दूसरे नहीं कर रहे। आज आप अपने इस्लाम की शम्माओं को रोशन करके चलें, दुनिया में फिरें, फिर देखें कि कौन ऐसा होगा। लेकिन होता पता क्या है, इन फूकों से बीमार ईमान वाले मुसलमान झड़ जाते हैं। वो अपनी गाड़ियों में स्काफ और छोटा सा कुरान भी रखते थे, वो भी निकाल दिया कि कहीं चेकिंग में पता ना चल जाए ये मुसलमान की गाड़ी है। ये वही दौर है ना कि जब फिर नामों से मोहम्मद नाम उतरा, जब मर्दों की दाढ़ियां कटी, और जब लड़कों को उन्होंने पकड़ के कहा कि खबरदार अगर अब्दुल्ला लफ्ज कहलाया इसको अब्दू कह दो और इसको मोहम्मद कह दो, कुछ भी कह दो, बस किसी तरह से मुसलमान हो। ये फितने क्यों आते हैं मुसलमानों में से कमजोरों को अलग करो। इस्लाम कमजोर ईमान वालों से पाक हो जाता है। जितना कुरान पर तनकीद की गई, नबी पर इल्जाम लगाए गए, उतना ही अल्लाह ने इस्लाम को दिया। आप देखिए कि अल्लाह सुबहान तआला ये काम करके मुझे और आपको तसल्ली दिला रहा है कि अगर तुम मुसलमान इस इस्लाम की शम्मा को मजबूती से थाम लो तो कोई नुकसान नहीं होगा। कहते ना घर का भेद ही लंका ढाए। जितना हम मुसलमान इस्लाम का नेगेटिव रवैया और एटीट्यूड शो करके दिखाएंगे उतना लोग इसको बुरा करेंगे। और आप आज भी इस वाक्य देख लें, इस्लाम पढ़े लिखे मुल्कों में फैल रहा है। आज आप इसके मिसाल वेस्ट और यूरोप को देख लें, जहां लोग लॉजिकली मुस्लिम हो रहे हैं। इसके बरक्स ईसाइत पसमानदा गरीब और मुफलिस और फाका जदगान मुल्कों में फैल रही। क्यों? वो जाके इनको फीड करते हैं, वो दवाएं देते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, देते हैं। क्यों? कहते हैं कि ये लो, और वो गरीब बेचारे अपनी दुनिया की चीजों की खातिर वो लेते हैं और फिर उस दिन में आते हैं। इस्लाम बहुत लॉजिकल दीन है, पढ़े लिखे लोग ही इस्लाम को लेकर चलते हैं। तो फिर मैं और आप आज अपने आप से कहें, इस इस्लाम के काम को मैंने अपना साथी काम समझना है, इस्लाम मेरा बच्चा है, मैंने ही इसको संभालना है। आज या तो मुहाजिर बनना है या अंसार बनना है। आज गैरों से ज्यादा यकीन कीजिए निफाक वाले मुसलमान इस्लाम पर तनकीद करते हैं, जिनको आप सो कॉल्ड मुस्लिम कहते हैं, या अपने फोरम और अपने टॉक शोज में आकर इस्लाम की बातों की धज्जियां उड़ा रहे थे। पहले जो काम कुफार करते थे आज मुसलमान करते हैं, और इस तरह की बातें पेश करके जो अमल करने वाले मुसलमान हैं उनको लोगों की नजरों में वो बहुत ही फंडोस और क्या कुछ करके पेश करते हैं। तो अल्लाह का फैसला सुनिए, बड़ी प्यारी आयत है, इससे अगली भी तीन दफा ये आयत आपको कुरान पाक में मिलेगी, जिसमें से पहली दफा यहाँ आ रही है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा वदीनिल हक्की लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। वो अल्लाह है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक के साथ भेजा है ताकि इसे पूरी जिन से दीन पर गालिब कर दे, ख्वा मुशरिकों को ये कितना ही नागवार हो। ये अल्लाह का फैसला। बात पीछे भी इस पर थोड़ी बहुत हुई थी कि इस्लाम दब के रहने वाला दीन नहीं है। आपका लाया हुआ दीन कौन सा दीन है कि जो हमेशा गालिब रहा। नबी सल्लम के बाद खुल्फाए राशिदीन का दौर आया, चार खुल्फा थे, हजरत अबू बकर को 2 साल की मोहलत मिली, हजरत उमर को 10 साल की मिली, इसी तरह उस्मान और अली का दौर आया, तकरीबन 20-22 साल का ये दौर खिलाफत जो था, इसमें लोगों ने इस्लाम को उसकी असल शक्ल में देख लिया। हजरत उमर के दौर में लोग जकात लेकर फिरते थे और कोई एक्सेप्ट करता नहीं था, और हजरत उमर रातों को उठ उठ के चक्कर लगाते थे और कहते थे अगर दरियाए फरात के किनारे कोई कुत्ता भी भूखा रह गया तो उमर से उसका सवाल होगा। और रातों को गर्ज कर रहे थे, एक रात गए तो देखा एक घर में से कराहने की आवाज आ रही है। नॉक किया, पूछा क्या मामला, कहा बीवी इस वक्त दर्द जहम है। कहा अच्छा, जरूरत है? घर गए, अपनी बीवी को लिया। कौन थी बीवी? फर्स्ट लेडी थी, खलीफा की बीवी थी। उसने जरूरी सामान लिया, जाकर एक आम शहरी की बीवी की मदद की बच्चे की डिलीवरी में। ये दौर भी जमीन ने देखा कि हुक्मरान छुप के नहीं बैठते थे, वो सड़कों पे होते थे। और इस आसमान ने उमर को देखा कि अपनी कमर पे बेवाओं के लिए आटा चावल लेकर आते थे। इतने वाक्यात हजरत उमर के, अगर आपको सारे सुनाने बैठ जाओ तो आप परेशान हो जाए। किसी एक औरत को अपने शौहर की जुताई में देखते हैं, रात को गुजरे और एक औरत शेर पड़ रही है, और अशार का खुलासा क्या था, अपने शौहर को मिस कर रही है। पूछा ये कौन औरत है? अल्लाह के नबी, इसका शौहर जिहाद पे गया हुआ है। काफी अरसा हो गया, इसका दिल चाह रहा है कि वो मेरे पास हो। अपनी बेटी हफ्सा के पास आया जो महातुल मोमिनीन में से थी, कहा बेटी अल्लाह हक में शर्माता नहीं, मुझे ये बता कि एक औरत कितनी देर के बाद फिर अपने शौहर को चाहती है, यानी बीवी को जरूरत की शौहर कब पड़ती है, ज्यादा से ज्यादा कितनी देर उससे दूर रह सकती है। कहने लगी 4 महीने, इसके ज्यादा नहीं औरत रह सकती। कहा अच्छा। अगले दिन हजरत उमर ने कैबिनेट बुलाई और एक ऐलान कर दिया, कानून बना दिया कि आज के बाद कोई शादीशुदा मुजाहिद 4 महीने से ज्यादा सरहदों पे नहीं रहेगा, उसको 4 माह से पहले वापस आना पड़ेगा और उसकी जगह दूसरे आएंगे। एक औरत की तलब ने उमर का कानून बदला दिया। ये थे हम, ये है इस्लाम का निजाम। आज हम किधर हो रहे हैं? मुझे ऐसे फील होता है कि जैसे कभी आप गलती से कमीज उल्टी पहन लें, कैसा लगता है? सांस घुटता है ना, अगर सीधा उल्टे में और उल्टा सीधे में डाल लें तो चला जाता है, दम घुटता है ना। आज हम जब अपने दीन पे अमल की बात करते हैं और लोगों को अपने दम घुटते हुए दिखते हैं ना, उसकी वजह यह कि हम उल्टे कपड़े पहनाते हैं। आज अब शरीयत को वैसी लागू कर दें जैसी को है, तो आप देखिएगा कि इंशाल्लाह फायदा होगा। इन सारी चीजों को लाकर देखिए, ये देखिए कि इस्लाम चला तो सही ना। बात लोग कहते क्या हुआ, दौरे खिलाफत थी, उसके बाद तो नहीं हुआ, लेकिन एक दफा दुनिया को दिखा दिया कि इस्लाम का निजाम प्रैक्टिकल है, और 1,000 साल तक इस जमीन और आसमान ने देखा कि मुसलमान इस पूरी दुनिया को रूल करते थे। पूरी दुनिया का खराज आप कह लीजिए कि मुसलमानों के पास आता था, सूरज के तुलू होने से लेके गुरूब होने की सब जगह मुसलमानों के पास थी। साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, अलजेब्रा, और इसी तरह से जिसको इल्मे जराही बोलते हैं, ऑपरेशंस करना, ये सब इस्लाम ने दिए मुसलमानों को। एल बिरूनी कौन था, अर्शमीदस कौन था, ये मुस्लिम्स थे। लोगों को दिखाया, ये आज क्यों नहीं है, क्योंकि हमने इस्लाम के पुर्जे बदल दिए, हम कंप्रोमाइजिंग हो गए। देखिए जब पहली दफा जहाज बना था, आपको तो राइट ब्रादरान ने बनाया था और चलाया था, सिर्फ 6 मिनट की पहली फ्लाइट थी और उसके बाद वो जहाज गिरा और वो डूब गया, लेकिन उन 6 मिनट्स ने लोगों को ये बता दिया कि इट्स क्वाइट पॉसिबल कि एक इंसान जहाज को उड़ा सकता है। आज दुनिया में हजारों की तादाद में मेरा लाइक सिर्फ कंपनीज होंगी, जहाज तो शायद लाखों और करोड़ों में हो, ऐसी ही है ना। तो जब एक चीज मुमकिन थी तो आज हो गई, तो आज क्यों नहीं? और यहां ये भी समझ लीजिए लियूस किरा वाला दीन ही कुल्ली में, कि पहले अंबिया सिर्फ दीन की तबलीग के लिए आए थे, और वही हजरत मूसा और ईसा की बात जो पिछले सबक में देखी थी, तो अल्लाह के नबी ने दीन को नाफिज करना था, और निफाज के लिए गलबा इस्लाम लाजिम है। और आप देखेंगे कि इस तरीके से आपको दिखेगा, अब आगे हम देखेंगे आयत 38 से आखिर तक तबुक का सफर है, जब इसमें बैरून अरब गलबा इस्लाम की बातें हुई और रोमन्स के खिलाफ है, हर तरफ था, हर एक को जाना है, वहां होगा। अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स इतना अहम है कि माल और दौलत वो काम नहीं कर सकते, और हकीकत ये कि जहां जान की जरूरत हो, आपकी जात की जरूरत हो, वहां आपका माल भी काम नहीं आता। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि आज हमें ऐसे लोगों को इस्लाम को दिखाने वाले बन जाए। अल्लाह मोहताज नहीं है, आज भी पूरी दुनिया में अल्लाह इस्लाम ला सकता है। अल्लाह आज सारे काफिरों को मारना चाहे, 1 सेकंड लगेगा, लेकिन वो मुझे और आपको ये जॉब दे रहा है कि तुम इस इस्लाम को लेकर चलो, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। और कोई सूरज को देख के जाके भूख मारे कि मेरी भूख से ये सूरज बुझ जाए, तो ये कभी भी नहीं होगा। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं हम ऐसा ही करें कि जो अल्लाह ताला हमसे चाहते हैं। अगली हिस्से में आप देखिए कि अहले किताब के उलमा की खयानतों का जिक्र है, और दुख के साथ कहूंगी कि आज उम्मत मुस्लिमा के दीनदारों में कुछ हद तक जब ये चीजें आई, इसलिए लोगों ने इस्लाम को फिर गालिब से ज्यादा मकलूब दीन समझ के कर दिया, और वो कह के जब दुनिया का माल दीन वालों की भी पसंद की चीज बन जाए, ऐसे लोग फिर कभी दुनिया में अच्छा इस्लाम नहीं लेकर आएंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं लोगों जो ईमान लायो, इन अहले किताब के अक्सर उलमा और दरवेशों का हाल यह है कि वो लोगों के माल बातिल तरीकों से खाते हैं और इनको अल्लाह की राह से रोकते हैं। दर्दनाक सजा की खुशखबरी दो इनको जो सोने और चांदी जमा करके रखते हैं और इनको अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते। एक दिन आएगा इसी सोने चांदी पर जहन्नुम की आग दहकाई जाएगी, फिर इसी से इन लोगों की पेशानी और पहलुओं और पीठों को दागा जाएगा। और क्या कहा जाएगा, ये है वो खजाना जो तुमने अपने लिए जमा किया था, लो अब अपनी समेटी हुई दौलत का मजा चखो। समझ आए? वो माल जिस पे जकात नहीं दी जाती उसको कंस कहा जाता है। ऐसे माल को क्यामत के दिन अल्लाह ताला आग में तपाकर लोगों की पीठों पे दागेगा। हम सब अपना चंद सेकंड के लिए मुहासबा कर लें कि क्या हमने अपने माल की जकात दे दी, क्या अभी भी ऐसा कुछ हमारे सर पे तो नहीं माल पड़ा होगा कि जिसकी वजह से हम कल क्यामत के दिन इस बुरे अंजाम को पहुंचे, और अगर देर हुई तो उसको वो जल्द से जल्द अदा करने की जरूरत है, इसलिए कि किसी को नहीं पता कि कल उसकी जिंदगी में आए कि ना आए। लेकिन याद रखिए कि ये चीजें हम सबको ये भी सिखाती हैं कि अल्लाह ताला की नजर हर चीज पे, बस जब हम कोई एक खास किस्म की नेकी करके मुतमईन होके बैठ जाते हैं, हम कहते हैं बस है ना, कर जो लिया ये काम, अब इसके बाद और क्या काम करें। लेकिन जब एक पर्चे में आपके पूरे नंबर भी आ गए, माशाल्लाह रोजे के पर्चे में पूरे नंबर हैं, और अगर जकात के पर्चे में नंबर पूरे नहीं होंगे तो अल्लाह ताला को फिर उसके बारे में पूछने का मुझे और आपको हक है। इसके बाद मक्का वालों की कुछ ख्यानतों का तस्करा है, उन्होंने अपनी मर्जी से दीन में कमी बेशी किस तरह से की। इन इद्दत शुहूर इंदल्लाह इस्ना अशर शहरों फी किताबिल्लाह, हकीकत है कि महीनों की तादाद जब से अल्लाह ने जमीन और आसमान को पैदा किया अल्लाह के पास लिखी हुई 12 ही है, इनमें से 4 महीने हराम है, यही ठीक साबता है। ये जो हम अक्सर सोचते हैं, बचपन में हम सोचते थे सबसे पहले किसने कैलेंडर बनाया था, तो ये डे वन से, यानी शुरू से, जो जनवरी फरवरी कह लीजिए या मुहर्रम सफर रबीउल अव्वल, ये साल के महीने 12 ये डे वन से यही चल रहा है। मक्का वालों ने इसमें क्या खराबियां की, लिहाजा इन 4 महीनों में अपने ऊपर जुल्म न करो और मुशरिकों से सब मिलकर लड़ो जिस तरह वो सब मिलकर तुमसे लड़ते हैं, और जान रखो कि अल्लाह मुत्तकियों ही के साथ है। नसी तो कुफर में एक मजीद काफिराना हरकत है जिससे ये काफिर लोग गुमराही में मुबतला किए जाते हैं, किसी साल एक महीने को हलाल कर लेते हैं और किसी साल इसको हराम कर देते हैं ताकि अल्लाह के हराम किए हुए महीनों की तादाद भी पूरी करें और अल्लाह का हराम किया हुआ हलाल भी कर लें। इनके बुरे अमाल इनके लिए खुशनुमा बना दिए गए, अल्लाह ताला मुनकरीन हक को हिदायत नहीं देता। देखिए नसी क्या था, कैलेंडर को बदलते थे। 4 महीने हुर्मत के इस्लाम में मौजूद है जिसमें लड़ाइयां नहीं करते थे। इन लोगों की आदत क्या हो गई कि कभी इनकी लड़ाई चल रही होती और ये लड़ना चाहते और आगे हुर्मत का महीना आ जाता तो ये अपने तौर पे कह देते अच्छा इस साल हुर्मत का महीना ये नहीं इससे अगला। सिर्फ आपको नामों में उलझाए बगैर समझाना चाहूंगी कि जैसे जनवरी के बाद फरवरी आता है ना, फिर मार्च आता है, जब फरवरी आता और वो हुर्मत का महीना होता तो लड़ाई रोकनी थी इनको, ये नहीं करना चाहते ना करते, लेकिन ये कहते नहीं नहीं लड़ेंगे हम क्यों छोड़ें, चलो भाई इस साल फरवरी मार्च के बाद आएगा, ये बात थी। तो ये अल्लाह की बातों को बदलना एक और भी बहुत मसला था, हर कुछ साल के बाद कुछ दिन ज्यादा कर देते एक महीने में ताकि हज हमेशा सर्दी में आए, क्योंकि जिस साल हज गर्मियों में आता था लोग कम आते थे, इनकी तिजारत भी घटती थी। हर चीज के पीछे याद रखिए माल है, जहां भी आप देखेंगे दीन लोगों ने बदला उसके अंदर माल की कोई कमी बेशी थी, अल्लाह ताला ने इसको इतना बड़ा गुनाह कह दिया कि तुम अल्लाह के बनाए हुए निजाम को बदलते हो, तो कोई बड़ी बात नहीं तुम करते रहो, अल्लाह को ये बात पसंद नहीं। और ऐसे काम करके लोग अपने आप को फिर भी मुतमईन समझते हैं, हालांकि ऐसे लोगों को ऐसी बातें करते हुए डरना चाहिए। अब आगे सूरत का क्लाइमैक्स 38 से आगे तक आप देखेंगे, बीच में साथ छोटे छोटे टॉपिक चलेंगे, लेकिन बुनियादी थीम क्या है तबूक का, तो बेहतर है कि अपने लफ्जों में सुनाई दूं कहानी के तौर पे ताकि मुहासबा भी आसान हो जाए और इनायतों को भी समझना आसान हो जाए। नबी सल्लम की मदीना की जिंदगी बड़ी खूबसूरत जैसे भी चली सो हुई, सारे गजबात में अल्लाह के नबी को फतह हासिल हुई सिवाय ओहद की भगदड़ और हुनैन की भगदड़ जो कि थोड़ी बहुत हुई, लेकिन एंड दोनों का भी ठीक रहा। मुसलमानों को धमकियां मिलने लगी किसी की तरफ से, नामों में ना उलझे फिर आप बहुत जल्दी में परेशान हो जाएंगे, लेकिन इतना समझ लीजिए कि उस वक्त के एक सुपर पावर ने मुसलमानों को धमकियां दी कि हम आ रहे हैं तुम पे हमला करने, बच जाओ हमसे। अब एक सूरत क्या थी कि मुसलमान दुबक जाते और तैयारी तो है ही कोई नहीं, सामान तो कुछ पास नहीं है, तो क्या कहा जाता कि हाय माफ कर दो दिस एंड दैट, हम तुम्हें जो कहेंगे करेंगे, जहां साइन करवाने करा लो, तुम्हारी एड लेंगे। एक सूरत ये थी और ये कर सकते थे, इसके करने का नुकसान क्या होता, फिर मुसलमानों को हमेशा उनके आगे झुकना पड़ता, मुसलमान अपना लॉ नहीं बना सकते, मुसलमान अपने रूल फॉलो नहीं करा सकते, हर जगह उनकी मदद लेनी पड़ती। अल्लाह के नबी ने इस रास्ते को इख्तियार नहीं किया, आपको सिर्फ खबरें मिली थी कि वो आ रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं और सरहदों पे फौजें जमा की, आपने अपने सहाबा को एक कॉल दी। मदीना शहर है, शदीद गर्मी, पकी हुई फसलें, यानी आप कहें कि आज की मेरी आपकी जबान में जून जुलाई का मौसम, वंस ऑफ ईयर जो फसल उगती थी जिसपे पूरे साल का गुजर बसर होता था वो फसल तैयार है, अब काटने का मौसम है। और सफर कितना दूर है, आज भी अगर आप मदीना से सीरिया जाके देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि 1.5-2 घंटे की जहाज की फ्लाइट है, 1 महीने का सफर था ऊंटों और घोड़ों पे। आप जरा सोच के देखिए, ठंडे दिल दिमाग से सोचिए, एसी वाली गाड़ियां नहीं, खाते पीते घूमते वाली गाड़ियां नहीं, इतना मुश्किल सफर था कि ऊंट भी पूरे नहीं है। 18 लोग, 18 लोगों के हिस्से एक ऊंट आया, राइड प्रॉब्लम। खाने का यह हाल था कि अमीर लश्कर रोज एक खजूर देता हर सिपाही को, और सारा दिन उस खजूर को चूसते चूसते उसकी गुठली भी खा जाते। और बाद में जब किसी ने पूछा कि उस एक खजूर से क्या बनता होगा, तो उन्होंने कहा, ये तो हमें उस दिन पता चला जिसे वो खजूर भी ना रही। ऊंटों के पेट काट के वो जोजड़ी के अंदर पानी होता है ना रिजर्व, वो तक पीना पड़ा। भूख से लोग मरने लगे कि वो 18 ऊंट भी जो एक हिस्से में थे, एक एक करके वो भी कटने लगे। लेकिन अल्लाह के नबी ने ओपनली कहा, सब तैयार हो जाओ। मदीना में एक कॉमन कॉल थी, फर्जे आइन बन गया, सबको निकलना। अब ये वक्त बड़ा मुश्किल था। सच्चे ईमान वाले तो सच्ची बात ऐसे ही वक्तों का इंतजार कर रहे होते हैं। माल की जरूरत, जान की जरूरत, सवारियों की जरूरत, पैसे की जरूरत, और कोई छोटी और करीब की दूर की बात नहीं, फासला बड़ा दूर का था। और सामने उस दौर की सुपर पावर, अपने साथ 2 लाख का लश्कर लेके खड़ा। आप और मैं क्या सोचते हैं कि आज कुफर के हाथ मजबूत है? कुफर के मादी हाथ हर दौर में मजबूत थे, और यही हुआ। अल्लाह के नबी की से कॉल पे सच्चे मुसलमानों ने निकलना शुरू कर दिया। पहले तो आपने कहा, जिसके घर में जो है ले आओ। इस वक्त तुम अपने बैंकों में कुछ रखते हो, घरों में रखते हो, लॉकर्स में रखते हो, तिजोरियों में रखते हो, तो ये जुर्म होगा, क्योंकि इस्लाम को जरूरत है। और यही इस्लाम का मिजाज है, मोमिन रख सकता है। आप अपने पास 1 करोड़ रुपया भी अपने बैंक में रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, अगर हलाल का है और ज़कात दी। लेकिन जिस वक्त इस्लाम को जरूरत पड़ जाए, और इस्लाम पे हाथ पड़े हैं लोगों के, उस वक्त इस्लाम कट रहा है, इस्लाम की इज्जत खत्म हो रही है, और हमारे माल अंदर पड़े हुए, ये जुर्म बनता है। गोया कैसे कि अल्लाह का बंदा एक अकाउंट बना के रखता है कि अल्लाह मैंने रखा हुआ है, जब तक तुझे तेरे रास्तों में जरूरत नहीं, मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूं, जिसने तुझे जरूरत पड़ी ये सारा तेरे का, सारे का सारा तेरा। ये वो वक्त था जब अबू बकर पूरे घर का सामान लेकर आ गए, और उनका बाप अबू कहाफा ब्लाइंड थे। बेटे की इन बातों पे अक्सर ही तनकीद करते हैं, जैसे अक्सर बुजुर्ग अपने जवान बच्चों के जोश को देख कर कहते हैं, जरा होश से करो। कहा, बेटा कुछ घर में भी छोड़ जाओ, क्या कर रहे हो? खैर, हजरत अस्मा उन बेटी थी, अबू बकर तो सब कुछ लेकर चले गए। अस्मा को पता था कि बूढ़ा दादा बाद में पूछेगा कि छोड़ के क्या गया। इन्होंने क्या किया, बाहर से पत्थर लिए और एक थैले में डाल के रख दिए। वो अबू बकर किधर है? कहा, अबू तो चले गए। किधर गए हैं? वो चले गए जरूरत ही, क्या ले गए? कुछ छोड़ के भी गए? कहा, अब्बा ये थैला छोड़ गए। देखा टटोल के, कहा चलो ये सोने के अंडे तो बड़े हैं, मैं ना वो पत्थर थे। हम आज उस वक्त की नौयत को समझ नहीं पा रहे। वल्ला ही आज भी तबूक है, वो एक तबूक थी, आज तो पूरे ग्लोब पे तबूक है। अबू बकर ने अपने बाप की तसल्ली के लिए पत्थर छोड़ दिए, या उनकी बेटी ने रख लिए, तो बेटा मुतमईन है, बाप मुतमईन है कि चलो कुछ तो छोड़ गया, लेकिन असल में वो सब लेकर चले गए। और ये वो वक्त था कि जब उमर अपने घर का आधा सामान लेकर गए और कहने लगे, आज तो अबू बकर से नेकी में मैं भरी जाऊंगा। वहां जाके पता चला और कहा, आज मुझे यकीन हो गया मैं कभी अबू बकर से आगे नहीं बढ़ सकता। अब्दुर्रहमान बिन औफ अपने घर की चीजें ला रहे हैं, इसी तरह उस्मान ने 9 दफा खड़े होकर 100-100 ऊंट सामान और चीजों से भरे हुए अल्लाह के रास्ते में डोनेट किए, और 9 दफा जुबान नबी से ये खुशखबरी सुनी, उस्मान फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, कि उस्मान आज के बाद तू कोई नेकी ना भी करे, तुझे जन्नत मिलेगी। जिसके पास जो था वो ले आया, ज्यादा था वो भी ले आया, कम भी ले आया। अकील नाम के एक साहबी, ये सारे वाकया तब आगे हम पढ़ेंगे, ये सुने होंगे तो आपको इंशाल्लाह सिर्फ आयतों का तर्जमा किफायत करेगा। एक साहबी ने सोचा, मेरे पास क्या है, क्या लेके जाऊं? कुछ नहीं, हाँ जान तो है ना, सारी रात एक यहूदी का कुआं चलाया, पानी भरा, हर एक डोल के बदले एक खजूर, और दिन भर में एक मुट्ठी भर खजूरें जमा करके शर्माते हुए अल्लाह के नबी के पास ले आए कि अल्लाह के नबी मैं तो यही लाया हूं। आयत पढ़ेंगे, मैं आपको जिक्र कर दूंगी वहां कि अल्लाह ताला ने आयत नाजिल कर दी, कुछ ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं, इल्ला जुहदा हूं, मेहनत की कमाई है। ऐसे वक्तों में मुनाफिकों के पोल खोले, वो बगले बजाने, कहने देखो मुट्ठी भर खजूरों से ये रूम को फतह करने जा रहे हैं, देखो खाने को है कोई नहीं, ये कर रहे हैं। ऐसे वक्तों में याद रखिए, जब इस्लाम पर कोई कड़ा वक्त आता है, ये असल में पोलराइजेशन होती है। जैसे आप नॉर्थ और साउथ पोल देखें ना, मैग्नेट रख दें और लोहा रख दें, थोड़ा सा उसको हिलाएंगे ना, सब ऐसे दायरे बनेंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अंदर। इस्लाम पे जब कड़ा वक्त आए, खुद से पूछिए अब इस वक्त मेरी असल खुलेगी। आम हालात में सब खुले मिले रहते हैं, नमाजें भी पढ़ते, रोजे भी रखते, गुनाह भी होते, सबको लगता है जी सब चल रहा है। लेकिन ऐसे वक्तों में बंदा बीज की रविश पे नहीं रहता, सच्चा ईमान बात को वो फिर चल पड़ते हैं, बेखतर कूद पड़ते हैं, और जो निफाक वाले उनका निफाक खुलता है। सूरत के शुरू में ईमान वालों की बातें भी आएंगी और साथ ही साथ आप पूरी सूरत में मुनाफिकों के किस्से पढ़ेंगे, और हमने इसको अब एक मुहासबे की सोच से सुनना है कि अगर मेरे ऊपर ये बात है, सच्ची बात है, होगी नहीं है, ये सिर्फ इस वक्त इंतजार है कि हम किसकी माहियत में ये काम कर सकें। अपने ओन पे अगर मैं और आप इस्लाम के इस गलबे में हिस्सा डाल रहे हैं तो ये भी नीड ऑफ द आवर है। जरूरत के वक्त अल्लाह के रास्ते में ना निकलना जुर्मे कबीर है। आज कैसे निकले? इल्म के लिए निकले। पूरे यकीन के साथ कह सकती हैं आपको, आज के दौर में जिहाद का नुक्ता आगाज इल्म के हासिल करने से होगा। इल्म और कुरान और दीन की तालीम बंदे को अपनी जात को अल्लाह के रास्ते में लगाने की दावत देती है। और इमाम बुखारी की आप शुरुआत पढ़ के देखें, जहां कोई ऐसी बात आती है वो कहते हैं हुम अहलुल कुरान, ये अल्लाह कुरान वालों की और इल्म वालों की बातें करता है। आइए इसको पढ़ते हैं और चुपके चुपके अपने लिए दुआएं मांगेंगे कि अल्लाह कल क्यामत के दिन मुझे किसी जगह ना पकड़ लेना कि मैं तो अपनी जात में खोई रही, मैंने अपनी जिंदगी की चीजों को ही अपना बड़ा बना लिया और तूने इस्लाम पर इतनी बातें रखी। हो सकते हैं आज जहां भी कोई मुसलमान किसी तकलीफ का शिकार है या आज कोई नॉन मुस्लिम इस्लाम को समझे बगैर मर रहा है, तो इसमें क्यामत के दिन मेरा भी कहीं दखल हो कि तुमने इससे जिहाद में हिस्सा क्यों नहीं डाला। फरमाया अय्युहल्लज़ीना आमनू अलकुम इज़ा क़ीला लकुम उन्फिरू फ़ी सबीलिल्लाहि, ए लोगो जो ईमान लाए हो, चेक कीजिए ईमान का दर्जा हरारत क्या टेम्परेचर है मेरे ईमान का, उसी के बाद ही बात समझ आएगी। समझ आ गया तो अल्लाह ताला कहते हैं मा लकुम, तुम्हें क्या हो गया कि जब तुमसे अल्लाह की राह में निकलने के लिए कहा जाए तो तुम जमीन से चिमट कर रह गए। यदि वो तो मैदान जंग में निकलने को तैयार थे, तुम तो क्लास रूम तक नहीं आ सकते। वो तो तलवारें उठा के निकलने को तैयार थे, तुम कलम उठा के नहीं आ सकते। मेरा और आपका जिहाद आज इल्म का जिहाद है। अल्लाह ताला का कमेंट सुनिए, अरदी तुम बिल हयात दुनिया, जब तुमसे अल्लाह की राह में निकलने के लिए कहा गया तो तुम जमीन से चिमट कर रह गए, यानी मटीरियलिस्टिक हो गए। क्या तुमने आखरत के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी को पसंद कर लिया? 3 सेकंड तक इसका जवाब अंदर ही यस नो में देंगे। और अदी तुम बिल हयात दुनिया मिनल आखिरा, अरदी तुम बिल हयात दुनिया मिनल आखिरा, तो सुन लो इस दुनिया की असीयत, फमा मताउल हयात दुनिया फिल आखिरत इल्ला कलील, ऐसा है तो तुम्हें मालूम हो कि दुनिया की जिंदगी का यह सब सरो सामान आखरत में बहुत थोड़ा निकलेगा। आज जिसको जमा करते करते दुनिया से जा रहे हो, क्यामत के दिन इसका बहुत थोड़ा वजन होगा और इस तरह के हालात में तुम्हें अफसोस होगा। और नहीं निकलते इल्ला तनफिरू युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा, ये वो आयतें जिसका तर्जमा काफी है, तुम ना उठोगे तो अल्लाह तुम्हें दर्दनाक सजा देगा और तुम्हारी जगह किसी और गिरोह को उठाएगा और तुम अल्लाह का कुछ भी ना बिगाड़ सकोगे। वल्लाहु अला कुल्ली शयइन क़दीर, और अल्लाह ताला हर चीज पे कुदरत रखता है। मैं आप सबको एक छोटा सा होमवर्क देना चाहूंगी, ये आयत 39, 38 और 39, इन दो आयतों का तर्जमा बा मुहावरा अपने इस कुरान से लिख कर एक नोट पैड पे आपने अपने नोट्स में लगाना है, खुद लिखना है, लिखा हुआ बस देख के लिखना है, जुबानी नहीं लिखना। और लिखते वक्त इंशाल्लाह ताला गौर और फिक्र तो फिर खुद ही होगा। फिर आगे अल्लाह ताला बेनियाजी का एहसास दिलाते हैं कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, अल्लाह के नबी को तुम्हारी जरूरत नहीं है, क्योंकि इल्ला तंसुरूहु फकद नसरहुल्लाहु इज़ अखरजहुल्लज़ीन कफरू, अगर तुम इसकी मदद नहीं करोगे, किसकी? वक्त के नबी की, इस नबी की बात तुम नहीं मानोगे, इसको अपनी बात इसकी मदद के लिए नहीं उठोगे तो अल्लाह को इसकी परवाह नहीं, क्योंकि तुमने अगर नबी की मदद ना की तो कुछ परवाह नहीं, अल्लाह इसकी मदद उस वक्त तक कर चुका जब काफिरों ने इसको निकाल दिया था, जब वो सिर्फ दो में का दूसरा था, जब वो दोनों गार में थे, जब वो अपने साथी से कह रहे थे गम न करो अल्लाह हमारे साथ है। इस वक्त अल्लाह ने इस पर अपनी तरफ से सुकून कल्ब नाजिल किया और इनकी मदद ऐसे लश्करों से की जो तुमको नजर ना आते थे, और काफिरों का बोल नीचा कर दिया, और अल्लाह का बोल तो ऊंचा होकर ही रहने वाला है, और अल्लाह जबरदस्त और दाना बीन है। हिजरत की राहें, जब अल्लाह के नबी सल्लम अबू बकर सिद्दीक को साथ लेकर निकले, और ये आयत अबू बकर की शान में, किसी को हक नहीं है दुनिया में کہ ابو بکر کے بارے میں ایک غلط لفظ بولے، کیونکہ ان کے لیے قرآن میں آیتیں اتری ہوئی ہیں. سب کو ہجرت کی اجازت مل گئی تھی لیکن ابو بکر کو روک لیا گیا. خاص لوگ تھے نا، اللہ کے نبی کے ساتھ جانا تھا. جو ہی آپ کو ہجرت کی اجازت ملی، پیچھے ہم نے سورہ انفال میں پڑھا کہ گھر کا حصار کیا گیا، چاروں طرف سے کافر تھے، تو اللہ نے آپ کو نکلنے کا حکم دیا. آپ سورہ یاسین کے آیتیں پڑھتے ہوئے نکل گئے، سیدھا ابو بکر کے گھر گئے. ابو بکر نے آپ کو انیوژل ٹائم پہ آتے دیکھا تو حیران ہوئے، کہا دروازہ بند کر دو، سب کو نکال دو. کہا اللہ کے نبی یہاں کوئی بھی نہیں ہے، بس آپ کے گھر والے ہیں، حضرت عائشہ پاس بیٹھی ہوئی تھی جن سے نکاح ہو چکا تھا. کہا کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی. ساتھ ہی ابو بکر کا کوئسچن تھا، اللہ کے نبی مجھے بھی ملی؟ کہا ہاں آپ کو بھی میرے ساتھ ملی. عائشہ کہتی ہے میں نے اپنے باپ کو خوشی کے ساتھ روتے دیکھا، اور اگر میں نے اسے ابو بکر کو نہ دیکھا ہوتا روتے تو میں کبھی نہ مانتی کہ کبھی کوئی خوشی سے بھی روتا ہے. کس بات کی خوشی تھی ابو بکر کو؟ ڈزنی لینڈ جا رہے تھے، کہاں جا رہے تھے؟ کوئی کھاتے پیتے ٹریولنگ لانگ جرنی تھی، کوئی سوسائڈ سینگ تھی، موت کا سفر تھا. پیچھے دشمن لگ گئے 100 اونٹوں کی قیمت، زندہ یا مردہ ابو بکر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پکڑ کے لے آئے، مکہ والوں نے وعدہ کیا ہم اس کو 100 اونٹ دیں گے، اور 100 اونٹ آج کی 100 گاڑیاں، آپ کو 100 لینڈ کروزرز کوئی دے. لوگوں نے پیچھا کیا. اس میں ایک بڑا پیارا واقعہ بھی آتا ہے، کبھی آپ پڑھ سکیں تو پڑھ کے دیکھیے گا کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو بالکل آپ کے قریب کر کے پھر اس کو اسلام کے قریب کر دیا. یہ باتیں پڑھنے کی ہیں. یہاں جو واقعہ یہ غار ثور کا، اللہ کے نبی نے روٹ ڈیفرنٹ لیا تھا کیونکہ آپ کو پتا تھا لوگ آپ کا پیچھا کریں گے، اور سب کو شک تھا کہ آپ جائیں گے مدینہ کیونکہ ادھر سے ہوائیں چل رہی تھیں، خوشخبریاں آ رہی تھیں مدینہ سے 2 سالوں سے. تو آپ نے مدینہ جانے کے بجائے جدہ کی طرف رخ کیا، گھوم کے گئے، راستے میں غار ثور میں پناہ لی. جن کو موقع ملا جا کے دیکھنے کا، ہم نے بھی اپنے اس ٹرپ میں دیکھی، یقین کریں یقین نہیں آتا اللہ کے نبی کیسے چڑھے ہوں گے. عامر بن فخیرہ جو غلام تھے ابو بکر کے، ان کو بکریاں دے کر پیچھے لگا دیے، کیونکہ اس دور میں لوگ پیروں کے نشانوں سے بھی کھرا ناپ لیتے تھے. جدھر جدھر ابو بکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر کے جاتے، عامر اپنی بکریوں کو پیچھے چراتے تاکہ نشان مٹ جائے. رات کو سب سو جاتے تو بکریوں کا دودھ رات کے آپ کو پلا جاتے. یہ وہ وقت ہے جب اسما نام کی ایک بچی جو ابو بکر کی بڑی بیٹی تھی، اپنی کمر کے ساتھ پٹکا باندھ کے اپنے باپ اور اللہ کے نبی کے لیے کچھ کھانا لے کے آتی تھی. یہ اسلام ایسے تو نہیں پھیلا، اس میں عورتوں کا بھی ہاتھ ہے، مردوں کا بھی ہے. اب ہوا کیا کہ ایک غار جو ابو بکر نے چوز کی، کہا اللہ کے نبی آپ ٹھہر جائیے، میں باہر ہوں، آپ باہر ذرا میں اس کو صاف کر دوں، پرانا غار ہے، کوئی تکلیف دہ چیز نہ ہو. پوری غار کو صاف کیا، چھوٹی چھوٹی دھجیوں سے بند کیا جگہوں کو، کیونکہ غاروں میں کیڑے مکوڑے سانپ بچھو ہوتے ہیں. جب پوری غار صاف ہو گئی کہ اللہ کے نبی تشریف لائیں. سفر کی تھکن بھی تھی، اور آج جب ہم جا کے دیکھا ہمارے ساتھ جو ساتھی تھے ہم یہی سوچ رہے تھے، ہم بس میں گئے تھے، پورے ہمارا جو ٹرپ تھا ان کے ساتھ ہم گئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم بس میں گئے اتنی دیر میں، اللہ کے نبی کیسے پہنچے ہوں گے اٹھنیوں پہ. اور جب آپ کی آنکھ لگ گئی تھکے ہوئے تھے، ابو بکر کی گود میں آپ کا سر ہے، اور ایک کیڑا یا سانپ نکلا اور ابو بکر کو ڈسنا شروع ہو گیا پاؤں کے انگوٹھے پہ، اور ابو بکر ہل بھی نہیں رہے. کیوں؟ کہ اس شخص کو جو دین کے دفاع کے لیے نکلا، کہیں اس کو تھکن نہ ہو، ان کی نیند خراب نہ ہو. لیکن جب درد برداشت نہ ہوا، آنسو نکلے اور ابو بکر کے آنسو اللہ کے نبی کے رخسار پہ پڑے. آنکھ کھل گئی، ابو بکر کیا ہوا؟ کہا کسی نے کاٹ لیا. فوراً آپ نے اپنا لعاب مبارک لگایا اور اس لعاب کے اثر سے اللہ نے سانپ کا اثر ختم کیا. یہ آسان باتیں ہیں. یا ایک چھوٹا سا کھٹمل نکلا ہے، ایک مچھر نکلا ہے، ایک لال بیگ نکلا ہے، تو ہم نہ بیٹھے ہم کے جائے قرآن پیچھے، ہمیں مچھر کھاٹ رہے ہیں. میں کہتی ہوں اگر آج کا مسلمان اس چیز کو نہ سمجھے اور قرآن گزر گیا، دور قرآن پورا ہو گیا، کیسے امت مسلمہ بننے کا حق دیں گے؟ اور جس کی نظر اتنی کمزور ہے کہ آج تو وہ وقت ہی نہیں ہے، یہ تو باتیں ہی پرانی ہیں، یہ تو ہے، تو اس سے زیادہ نہ سمجھ کوئی نہیں ہے. یہ آج اس کی سزا ہم کاٹ رہے ہیں. آج ہم اتنے کمپرومائزنگ ہو گئے، آج ہمیں اپنے دین کی فکر نہیں، ہمیں جان کی فکر ہے. گھر کا پائپ لیک کر رہا ہے، چھت لیک کر رہی ہے، ٹوٹی لیک کر رہی ہے. اتنے پرفیکشنسٹ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ہماری نظر ہوتی ہے. دین اسلام کے پنکھے خراب، ان کی ٹوٹیاں خراب، پورا اسلام کا گھر اس وقت بسیدہ پڑا ہوا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں اٹس فائن، چل رہا ہے نا معاملہ، تو چلنے دو. تو یاد رکھیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو کہتے ہیں انفرو خفافاً وثقالاً، نکلو، نکلنا پڑے گا، خواہ ہلکے ہو یا بوجھل. کیا مطلب؟ یو ہیو مینس اور یو ڈونٹ ہیو مینس، یو ڈیزرو اٹ اور یو ڈونٹ ڈیزرو، یو کین افورڈ دس اور ناٹ. اللہ کا یہ مطالبہ نہیں ہے کہ ہم کروڑوں روپے دے دیں اللہ کے راستے میں. کروڑوں ہیں تو کروڑوں پوچھے گا اللہ، نہیں ہے تو اللہ آپ سے مجھ سے کبھی نہیں کہے گا دیے کہ نہیں. آپ کے جان ہے جان لگائیے، مال ہے مال لگائے، माल वालों से लमाल का पूछेगा, मेरे से आपसे जान का पूछेगा, दिखाओ कितनी जान लगाई, कितना वक्त लगाया इस खूबसूरत दीन को बेनकाब करने में, तुमने दिन रात एक किया कि नहीं, ये लगा लीजिए, फिर अल्लाह से उम्मीद कीजिए कि अल्लाह ताला इसको हमारे हक में तो डाल दे। तो जब अल्लाह के लिए निकलना पड़ा तो जाहिदु भी अम्वाली है बनफुसी को, जान और माल दो चीजें दीन इस्लाम आज मुझसे और आपसे मांगता है। फरमाया नहीं देते तो डोंट वरी ज़ालिकुम खैरुल लकुम, एक एक आयत हाईलाइट करने वाली है, बिलीव मी मैंने अपने इस कुरान की तकरीबन हर एक दूसरी आयत के बाद हाईलाइट किया हुआ है, बार बार आपको कहना भूल जाती हूँ, लेकिन जिस आयत को आप फील करें आपके दिल पर असर करें उसको हाईलाइट करें, इंशाल्लाह ये आपके दिल पर लिखी जाएगी। इसलिए कहा कि तुम्हारे अपने ही हक में बेहतर है अगर तुम जानो, इस जुमले पर गौर करें, आज का मुसलमान अगर इस्लाम के दिफा में निकलेगा उसके हक में बेहतर है। तर नवाला समझ के हमें कोई निगल नहीं जाएगा, कच्चे चने समझ के कोई खा नहीं जाएगा, लोगों को पता होगा मुसलमान जिंदा कौम है और अल्लाह को जरूरत नहीं। और अल्लाह ने आपको दो चीजें दिखाई हैं जब हिजरत के सफर में निकले, ओनली वन कंपेनियन वाज विद हिम अबू बकर, और जब तबूक के लिए निकल रहे हैं तो माशाल्लाह मुसलमान सैकड़ों में थे, यही सिखाया। जब दीन के सफर में आप शुरू करते हैं ना तो आपके साथ सिर्फ एक ही बंदा है, अल्लाह उससे भी दीन का काम ले लेगा, और वक्त के साथ एक सैकड़ों में बदल जाएगा, उस वक्त भी अल्लाह ही उनसे काम लेकर आएगा। तो जब अल्लाह ताला दोनों को लेकर चलने की दावत दे तो फायदा होगा। अब अगली आयतों में कमेंट्स देखिएगा, क्यों नहीं निकले बहुत सारे लोग या क्यों नहीं निकलते, याद रखिए कौन नहीं निकला, तबूक के सफर में आपके दिल में एक क्वेश्चन हो रहा होगा, कौन नहीं निकला, सब सच्चे मोमिन निकल गए, चार लोग मुसलमानों में पीछे रहे वक्ती तौर पे, आगे उनकी बात आएगी तो मैं बताऊंगी, लेकिन बाद में वो भी निकल गए। कौन पीछे रहे? मुनाफिकीन पीछे रहे, और मुनाफिकों का भी एक टोला निकला, उनको अपनी इज्जत रखने के लिए मुरव्वतन जाना ही पड़ता था, जैसे आज हम कभी खानदानी शादियों में मुरव्वतन जाते हैं, ना गए तो बुरे बनेंगे, बातें होंगी, दोस्तों की शादियों दावतों में जाना ही पड़ता है, जिस तरह आज हम मुरव्वतन दावतों में जाते हैं ना, अरबों को और ऐसे लोगों को जो दिल में मोहब्बत नहीं भी रखते थे इस्लाम की, उनको इस्लाम के लिए निकलना पड़ता था, क्योंकि ना निकलेंगे तो लोगों को पता लग जाएंगे मुनाफिक है। आज तो हम डंके की चोट पे नहीं जाते, और नहीं जाते नहीं बल्कि कहते हैं नहीं जाना चाहिए, आज के दौर में भी इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो अल्लाह ताला कहते हैं आओ आपको बताएं ये क्यों नहीं निकलते। फरमाया लौकान अरदन करीबन व सफरन कासिदा, ए नबी अगर फायदा आसानी से हासिल होने वाला होता और सफर हल्का होता तो वो जरूर तुम्हारे पीछे चलने पर आमादा हो जाते, मगर इन पर तो ये रास्ता बहुत कठिन हो गया। सच हम करीब जा सकते हैं, दूर नहीं जाएंगे, हमारे घर से बहुत दूर है। आप देखिए जैसी हमारी गाड़ियां, वैसा तो उस दौर में तसव्वुर भी नहीं था, और जैसी आज हमारी रोड्स हैं ऐसी रोड्स थी उस दौर में, लेकिन आज अगर दीन के तकाजे के लिए करीब और दूर का फर्क रखते हैं तो इस आयत को अपने लिए मोटो बना लें। करीब जाओगे फायदे का मकसद हो तो होगा, खूब इज्जत मिलेगी, प्रोटोकॉल होगा, खाना पानी मिलेगा, चलो चलते हैं, चलो एंजॉय करेंगे ना, लेकिन जरा दूर का मसला और कुछ मिलना नहीं, जान कटने का डर है, कजा फिर निकलना मुश्किल हो जाता है, और जब नहीं निकलेंगे तो ना निकलने की कमी कैसे पूरी करेंगे, कसमों से। बस यहलिफूना बिल्लाही, अब वो खुदा की कसम खा खा कर कहेंगे, अब ये कौन है मुनाफिक, जाते तो नहीं थे लेकिन साबित ये करना चाहते थे कि हम वी आर वेरी मच वेल विशर, हमारा दिल बड़ा चाहता जाए, बहुत अच्छा काम है माशाल्लाह, बहुत मजा आता है, बस आया नहीं जाता, निकल नहीं सकते, घर नहीं छोड़ते। तो आके अल्लाह के नबी के सामने सच्चे बनते थे, कैसे, कसमें खा खा कर कहते, अगर हम चल सकते तो यकीनन आपके साथ चलते, वो अपने आप को हलाकत में डाल रहे हैं, अल्लाह खूब जानता कि वो झूठे हैं। देखिए जो आप और मैं कर नहीं सके ना, असल में वो हमने करना ही नहीं था, जो हो जोके यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें, सच कि नहीं, नामुमकिनात को कभी आपने मुमकिन में बदलते देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह। एक शादी खा के देखिए जरा, पाकिस्तान लोग चले जाते हैं अमेरिका से सफर करके, भांजे की शादी, भतीजे की शादी, भाई की शादी, बच्चों की शादी, इम्पॉसिबल पॉसिबल में बदलता, हर इम्पॉसिबल के अंदर एक लफ्ज लिखा होता है, लिखी नोट करके लिखे, इंग्लिश में लिखे इम्पॉसिबल, अब इसको सप्लेट करें आई एम पॉसिबल, असल ये दुआ करें कि हमारा दिल चाहने लगे, जिस दिन मेरा दिल चाहने लगेगा ना कि मैं अल्लाह के रास्ते में निकलूं, ना गाड़ी का मसला, ना राइड का मसला, ना दूरी का मसला, ना घर का मसला, ये नसीब की बात है। मैं तो सिर्फ ये सोचती हूँ कि बात रिसोर्सेज की नहीं है, तौफीक की है। ये ना कहें कि अल्लाह रिसोर्सेज दे, ये कहें कि अल्लाह तौफीक दे। हमारा स्कूल था पहले एक जगह और वहां से लोगों को आना आसान था, फिर वहां से बदल के दूसरी जगह चला गया। अब जिस जगह पहले थे वहां सब ट्रेनें, बसें, सब एक सेंट्रल जगह थी जैसे डाउनटाउन है, तो चारों तरफ से लोग आते थे। तो जब जगह बदली तो कुछ लोगों के जहन में ये क्वेश्चन था, मैनेजमेंट के लोगों में भी, कि अब यहाँ क्या होगा, वो लोग कैसे आएंगे, या थोड़ा सा नस्बतन रूट मुश्किल है। तो साथियों में से किसी एक का जुमला याद है, अल्लाह इसी को उनकी अपनी सकामत का जरिया बना दे, उन्होंने कहा था कि गाड़ियां और बसें और ट्रेन हमें यहाँ नहीं लेकर आती, हमें हमारा शौक लेकर आता है, हमारा पैशन लेके आता है। देखिएगा हम नई जगह पे भी पहुंचेंगे, और वल्लाह ही मैंने यही देखा है अपने पिछले जितने भी साल अल्लाह ने जिंदगी के दिए ना इस दीन में, जिनको नहीं आना होता वो एक बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर में से भी निकल कर नहीं आते, वॉकिंग डिस्टेंस से भी नहीं आते, और जिन्होंने भी आना है ना वो घंटा घंटा की ड्राइव से भी आते हैं। जिस इलाके में भी स्कूल कभी बनाया ये सोच के कि यहाँ बहुत मुस्लिम है, रियलिटी में क्या हुआ, वहां के करीब लोग नहीं आए, दूर से आते हैं। ये अल्लाह का फैसला है। तो असल ये मांगिए कि शौक मिल जाए। गाड़ियों की तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, बैठने की तो कोई बात ही नहीं है। अब अल्लाह के नबी बहुत खुशगुमान लोगों में से थे, कभी किसी के बारे में बदगुमान नहीं होते थे। जो लोग नहीं आते थे, नहीं आना चाहते थे, तो आपके पास आके कस्में खाते, अल्लाह के नबी बड़ी मजबूर हूं, क्या बताऊं ये, तो अल्लाह के नबी क्या करते, चले अल्लाह आपको माफ करे, चले कोई बात नहीं, चले घर बैठ के दुआ करें, चले घर से कर ले, ये कर ले, वो कर ले। तो अल्लाह ताला अपने नबी को थोड़ा सा इसमें सख्त होने की दावत देते हैं, क्या अफअल्लाहु अनका, ए नबी अल्लाह आपको माफ करे, आपने इनको क्यों रुख्सत दे दी, यानी क्यों इनकी एप्लीकेशन आपने एक्सेप्ट कर ली। आपको चाहिए था कि खुद रुख्सत ना देते, ताकि आप पर खुल जाता कि कौन लोग सच्चे हैं और झूठों को भी तुम जान लेते, यानी जो झूठे उजर करके घर बैठे, जिनका उजर सच्चा था, इन दोनों को देखना आपको तसल्ली दिला दिया गया कि आप इनकी बातों पे फौरन ना चले। यानी यहां भी एक मैनेजमेंट के लोगों के लिए नुकता है कि हर एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने से पहले ये देख लो कि कौन डिजर्विंग है और कौन नहीं है, किसकी छुट्टी एक्सेप्टेबल है और किसकी छुट्टी एक्सेप्टेबल नहीं है। साथ ही कह दिया अल्लाह जी इकट्ठा पढ़ के फिर इसमें हम इकट्ठी बात करेंगे, बार बार रोकने में वक्त बहुत लगता है, लेकिन हकीकत है कि ये आयतें अभी डिजर्व करती हैं कि हम इन चीजों को लेकर चले। فرمایا لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، جو لوگ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی تم سے درخواست نہ کریں گے کہ ان کو اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے، اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ ایسی درخواستیں تو صرف وہی لوگ دیتے ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور دوسری وجہ یہ نوٹ کیجیے، یہ بہت بڑی وجہ ہوتی ہے دین کے کام سے رکنے کی، کہ جن کے دلوں میں شک ہے، کاز کا یقین نہیں، کہتے نہیں یہ صحیح کاز نہیں، یہ صحیح پلیٹ فارم نہیں ہے، یہ ٹھیک لوگ نہیں، ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے، اور فرمائے وہ اپنے شک ہی میں متردد ہو رہے ہیں۔ اگر واقعی ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ تیاری تو کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا ہی پسند نہ تھا۔ اس کو ہائی لائٹ کریے گا، ولیکن کریہ اللہ انبیاءہم، اللہ کو پسند ہی نہیں تھا کہ یہ نکلے، اللہ ڈونٹ لائک دم ٹو اسٹینڈ آؤٹ، کہ وہ نکلے کھڑے ہو جائے، اس لیے اس نے ان کو سست کر دیا اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھ رہو بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ، اور باقی رہ گئے یہ نہیں گئے تو اپنا دل نہ میلا کیجئے، کیونکہ اگر وہ آپ کے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر خرابی کے سوا اور کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے، وہ تو تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے، اور تمہارے گروہ کا حال یہ ہے۔ ابھی ان میں ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں، یعنی ابھی ایمان دل کے اندر نہیں گھسا، اور وہ کافروں کی اور منافقوں کی اور دوسرے گروہوں کی جو اسلام سے دور ہیں ان کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں۔ اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے، اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنے اٹھانے کی کوششیں کی اور تمہیں ناکام کرنے کے لیے ہر طرح کی تدبیروں کا الٹ پھیر کر چکے ہیں، یہاں تک ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا کام ہو کر رہا۔ ان سب میں چند باتیں ہمارے لیے، پہلی بات یہ کہ عام حالات ہوتے ہیں نا تو لوگوں کی ڈیوٹیز لگتی ہیں، آپ ہاسپٹلز میں لے لیں، سکولز میں لے لیں، والنٹیئر کہیں کر رہے ہیں دیکھ لیں، सबको पता है इसकी शिफ्ट है, अब इसको आना है इसको जाना है। लेकिन एक होती है इमरजेंसी, जब इमरजेंसी हालात होते हैं तो क्या होता है, हर एक को निकलना पड़ता है। ये सख्त इम्तिहान होता है, मतलब जंग का जमाना होता है तो अक्सर फौजी और फौजियों को छोड़े रिटायर्ड को बुला लिया जाता है, गैर तरबियत याफ्ता फौजियों को बुला लिया जाता है, जो छुट्टियों पे गए होते हैं उनको भी बुला लिया जाता है, क्योंकि खतरे की बात है। इसी तरह दीन के काम के भी लेवल होते हैं। आम रूटीन में इंसान को भूखा प्यासा रहना पड़ता है, कभी रह ले कभी नहीं, लेकिन कभी कभी दीन के काम डिमांड पर होते हैं। जब डिमांड हो और उस वक्त हम अवेलेबल ना हो, तो कभी कभी जब हम शौक रखते हैं कि दीन का काम करें, तो अल्लाह ताला कहते हैं प्लीज आप घर में रहिए, स्टे होम, आप घर में रहे, क्योंकि आप फलां वक्त पे नहीं निकले थे। इसलिए अल्लाह ताला ने यहां ये बता के हमें तसल्ली दी और नबी को भी दी कि अगर ये निकल भी चलते, ऐसे टूटे दिल वाले और अधूरे दिल वाले और आपकी कॉज से सिंसियर लोग निकल भी पड़ते ना, तो ये 100 100 कीड़े निकालते, बैठते बैठ के जमाते, बातें करते, कॉन्वर्सेशन होती, कानों में बातें करते, देखो ये है वो है ऐसे है, ये क्या जरूरत थी, गर्मी में ले आए, को पता था कोई निकलने फायदा है नहीं, मारने किसको जा रहे हैं, अनअचीवेबल किस्म का टारगेट है, दिस एंड दैट। तो अल्लाह ताला कहते हैं बेहतर है रहने दो। देखिए कुछ लोगों का ना जाना जाने से ज्यादा फायदा देता है, कुछ लोगों का ना आना आने से ज्यादा फायदा देता है। बस आप सब यहाँ सीखने के लिए आए हैं ना, माशाल्लाह आप में से एक एक पर्सन इस वक्त इस पूरे सिस्टम का हिस्सा है। जो बात हो रही है ये आपके शौक की वजह से हो रही है, वरना मैं तो इसको बड़ी जल्दी गुजारने की कोशिश करती, लेकिन आपके शौक और आपकी आंखों के अंदर जो तलब है उसकी वजह से मैं कहती हूँ कि जिंदगी का क्या पता, ये बातें आप सुनी लें तो बेहतर है, जो होगा होगा कल देख लेंगे। लेकिन अगर आप में से कोई आए, लेट सी जरा देखते हैं कितने लोग आ रहे हैं, फिर वो गिने। अच्छा कितनी लाइटें जली हुई हैं इस रूम में, 1 2, ओफ माई गुडनेस इतनी लाइटें गिनी हुई हैं। फिर उसके बाद वो कहते हैं कुर्सियां कैसी इनकी हिलती हैं, आप मुझे बताइए क्या उसका फोकस होगा पढ़ने में, और अगर वो आ भी गया तो क्या उसको कुछ फायदा होगा, बल्कि उसके आने से एक चेयर रिजर्व हो गई, इस तरह की बातें करने से माहौल खराब हो गया ना। तो बिल्कुल इसी तरह से कुछ लोगों के ना होने पर परेशान होने की बजाय क्या करने की जरूरत है कि इंसान अपने आप को फोकस रखे। थोड़े लोग जो डेडिकेटेड हैं और जो आपके मकसद को समझते हैं, वो ज्यादा डिफरेंस पैदा कर सकते हैं बहुत बड़ी जमात पैदा करने से। इसलिए अल्लाह ताला यहाँ डांट के ये सारी बातें हमको कहते हैं कि देख लो चल पड़ो, निकल चलो, आज तुम अपने आप को रखो। आज आप देखिए यकीन करें, अगर हम इस्लाम को फिर अपने दिल पर लेके सोचें तो आज हमारे दिल बोझिल होने चाहिए। क्या आज लोग इस्लाम पे इतनी बातें करें उनके हमले, और आज कोई हम मुसलमानों का सोना देखे, और आज हमारी दावतें देखे, हम जाहिल काहिल पूरी दुनिया में गुस्से के हम तेज बदतमीज बद तहजीबियां हम करने वाले लोग, हम पे हंस रहे हैं और हम कहते हैं नहीं हम बहुत खुश हैं, इसलिए कि हम इंजॉय तो करें जिंदगी। तो ये इंजॉयमेंट शायद जब तक ही रहेगी जब तक अल्लाह चाह रहा है। जब कौमों में इस तरह की तकलीफें आती हैं तो उस वक्त हालात क्या होते हैं, तारीख का एक वाक्य याद आ गया, यही अभी मैंने पढ़ा कि जब उनको माल सोना चांदी पेश किया जाएगा तो एक खलीफा था, दुनिया खुश हो गए, कोई भी नाम थे, नामों की किसी को जरूरत नहीं है। जब वो कैदी बने, दुश्मन कौम ने उनको कैदी बनाया, तो खाने के वक्त में ट्रे भर के हीरों मोतियों की उनके आगे पेश की, वो समझे खाना आया, जब कपड़ा उठाया तो उसमें मोती चांदी हीरा था, तो कहने लगा इसको मैं क्या करूं, ये मैं खा सकता हूं। तो उस वक्त फिर दुश्मन फौज के शख्स ने कहा काश ए खलीफा ये बात तुझे उस वक्त पता चलती जब तू हुकूमत में था, इस दौलत को पाने के लिए तू अगर ना पीछे होता तो आज हम तुझ पे गालिब ना आते। यानी जब मुसलमान जर परस्त और दौलत परस्त होने लगते हैं तो अल्लाह ताला दुश्मनों को ले आता है। इसलिए दुश्मनी की बातों को लेने से पहले दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें उठाए, और ये आयत गौर की है कि अल्लाह को अच्छा ही ना लगा उनका उठना। सोचिए अल्लाह ने रिजेक्ट कर दिया, उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी कि आप नहीं जा सकते, तो खुलासा कह के जितना थकेंगे उतने रब को प्यारे लगेंगे। बासवनीकियों का मौका आता है, कहते नहीं अगले साल फिर देखेंगे, छोटी सी अब 5 पारे मिस हो गया अब अगले साल सुनेंगे, अगला किसने देखा है। देखिए इंसान की खुशकिस्मती है कि मौका मिले और उससे फायदा उठाए। किसी इंसान के घर के बाहर नहर बह रही हो और वो प्यासा रहे, नेकी का मौका हो और नेकियां ना करे, तो अल्लाह के इंतकाम को बुलाने वाली बात है। जिन लोगों के दिल नहीं होते, अब आप जरा उनके उजर सुनिए आगे जितने भी बातें, ये वो लोग हैं जो रहे तो निफाक की वजह से थे, लेकिन देखिए कितने बेकार किस्म के बहाने कर रहे हैं। आयत 49 में वमिन हूं मैं यकूल, और इनमें कोई ऐसा भी है, जुदविन कैस इसका नाम आता है, मुझे रुख्सत दे दीजिए और मुझको फितने में ना डालिए, सुन रखो फितने में तो ये लोग पड़े ही हुए हैं, और जहन्नम ने इन काफिरों को घेर रखा है, तुम्हारा भला हो तो इनको रंज होता है और तुम पर कोई मुसीबत आती है तो ये मुंह फेर कर खुश खुश पलटते हैं और कहते जाते हैं, अच्छा हुआ हमने पहले ही अपना मामला ठीक कर लिया था। यानी ये बीच की राह के शख्स। इस शख्स का फितना क्या था? कहने लगा, अल्लाह के नबी मुझे जंग में ना ले जाएं। क्यों? कहा कि वो मुझे पता चले आप रोमियों के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं, तो रोमन औरतें तो बड़ी खूबसूरत होती हैं और मैं खूबसूरत औरत को देखकर सब्र नहीं कर सकता, तो मेरे नफ्स पे बहुत फितना, मुझे घर रहने दें। अल्लाह कहते वो तो वहां जाके फितने में पड़ते, हालांकि अल्लाह फिल फितनति सकातु, ये तो आज ही फितनों में पड़ गए। तो दीन से फरार, दीन के काम से फरार फितने में पड़ना है। लिख लें, दीन का कोई काम आप कर सकते हैं और आप नहीं करते तो मान लीजिए कि आपने खुद को किसी बहुत बड़े फितने में रखा। अब होता क्या है, जब भी किसी नेकी की कॉज को दावत होगी तो तीन तरह के गिरोह सामने आएंगे। ये नोट करें, क्योंकि अब आगे वो तीनों गिरोहों की बातें हम आगे चलते जाएंगे। पहली बात यह है कि दिल से काम करते हैं, मुखलिसीन, जान माल वक्त उनको कहना नहीं पड़ता, उनका पैशन होता है, उनकी रोल कॉल लगाए ना लगाए, साइन इन साइन आउट हो ना हो, पेनल्टीज हो ना हो, वो खुद आते हैं, दिल से काम करते हैं। दूसरे बीच की राह वाले, डावा डोल, देखा देखी आ जाते हैं, ढीले डाले, किसी के साथ हुए देखा तो चल पड़े, फिर ना कोई साथ हुआ तो छोड़ दिया, यानी बीच वाले। और तीसरा गिरोह, काम करने वालों की हिम्मतें तोड़ने वाले। अरे छोड़ो ना, क्या जरूरत, ये मौलवियों का तो काम है, ये ऐसे मुल्ला, तुम ये वो करो, ये तो बस ऐसे ही बातें करते करते हैं। इन तीनों गिरोहों की बात अल्लाह ताला आगे हमारे सामने ला रहे हैं कि मुनाफ़िकत के फितनों में वही लोग पड़ते हैं कि जो इस्लाम के साथ संजीदा नहीं होते, जिनका दिल अल्लाह के काम के साथ पूरा नहीं होता, वो जम नहीं पाते। अल्लाह ताला कहते हैं ऐसे लोगों की कैफियत क्या है कि वो तुम्हारी नेमतों को देखकर तुम्हें अल्लाह ने कोई खैर दी तो उस वक्त वो परेशान हो जाते हैं। इनसे कहो, हमें हरगिज कोई बुराई नहीं पहुंचती मगर वो जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दी, क्योंकि अल्लाह ही हमारा मौला है और अहले ईमान को इसी पर भरोसा करना चाहिए। इनसे कहो, तुम हमारे मामले में किस चीज के मुंतजिर हो? इसके सिवा और क्या है कि दो भलाइयों में से एक भलाई हमें मिलेगी? कॉन्फिडेंस देखिएगा जरा, कितनी जरूरत है इस वक्त इस जुमले में कि तुम क्या सोचते हो कि हम अल्लाह के रास्ते में निकल कर कोई नुकसान करेंगे? हालांकि देखो हमारा मामला क्या, हमें दो में से एक भलाई जरूर मिलेगी। कौन सी? या शहीद हो जाएंगे या हम गाजी बनकर फतह याब होकर आएंगे, तो बताओ हमारा क्या नुकसान हुआ? और हम तुम्हारे मामले में जिस चीज के मुंतजर है वो ये है, और ये कि अल्लाह खुद तुमको सजा देता है या हमारे हाथों से दिलवाता है। अच्छा, तुम भी इंतजार करो और हम भी इंतजार करने वाले हैं। क्या बता दिया कि अल्लाह ताला जुर्रत के साथ लोगों को आंखों में आंखें डालकर बात करना सिखाते हैं कि देखो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तौम व करहन, मुनाफिक की जब जान पे पड़ती है ना तो जान बचाने के लिए दीन का काम करता है, चाहे वो डोनेशन देनी हो या फिर कोई और काम करना हो। अल्लाह ताला कहते हैं हमें इसकी जरूरत नहीं, तुम नहीं देते ना दो, दोगे तो खुशी से दो, नहीं देते तो ना दो।